साले साहब, आप यहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं और हम सारे घर में आपको ढूंढते फिर रहे हैं। निशान छत पर एकांत में खड़ा था, अचानक आई अन्वय की आवाज सुनकर पलटा। जीजू, निशांत ने नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखा। अन्वय तब तक उसके बगल में आ खड़ा हुआ और उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर खुद में ही मगन, फिर बेपरवाही से बोलना शुरू कर दिया। यहाँ अकेले मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? लगता है भूख लगी है। तभी दुल्हे राजा के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। चलो करवा दें हम तुम्हारी पेट पूजा, उतरा चेहरा एक बार फिर खिलोखेगा। भूख नहीं है मुझे, निशांत ने तुनकते हुए कहा, मुंह ऐंठते हुए चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अन्वय ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। अरे पर हुआ क्या, अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से भूख प्यास सब मर गई तुम्हारी? अन्वय महाराज जानकर बेचारे निशांत को छेड़ रहे थे और उसकी हालत के खूब मजे ले रहे थे, और उसकी इन हरकतों से निशांत खींच उठा था। उसने तिरछी निगाहों से उसे देखा। जीजू, परेशान मत कीजिए, मुंह बिचकाते हुए उसने वापस चेहरा सामने की ओर घुमाया तो अन्वय चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए, चलो नहीं करते मजाक, बताओ क्या हुआ है? मेहंदी की रस्म नीचे चल रही है, सब इतने खुश हैं, फिर तुम क्यों यहाँ मुंह लटकाया किरे खड़े हो? हाथ देखो मेरे जीजू, सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। निशांत ने रोतलू सा चेहरा बनाते हुए अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए, जिन पर आगे पीछे भरी भरी मेहंदी लगी हुई थी। उन्हें देखते ही अन्वय की हंसी छूट गई और बेचारा निशांत रुआंसा हो गया। देखिए, आप भी हंस रहे हैं मुझ पर, जब घर वाले ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो बाहर वाले क्या करेंगे? अरे मेरे लाल, रोते क्यों हो? अच्छा बताओ, जब इतनी ही नापसंद थी तो लड़कियों जैसे भर भर कर मेहंदी लगवाई ही क्यों तुमने? अन्वय हंसना छोड़कर प्यार से उसे पुचकारने लगा। वहीं उसका सवाल सुनकर निशांत तुनकते हुए बोला, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आप नहीं जानते, अर्पिता को समझाना था ना तुम्हें? ये सुनकर निशांत, जो पहले से भरा बैठा था, चिढ़ते हुए उस पर बरस पड़ा। वो बड़ी समझती है, एक बार जिस बात की जिद पकड़ ली तो उसके बाद भगवान भी जमीन पर उतर आए तब भी अपनी जिद से टस से मस ना हो वो। देखा नहीं था आपने, जब तक मैंने मेहंदी नहीं लगवाई उसने जान खा रखी थी मेरी, अगर नहीं लगवाता तो वहां वो मैडम भी नहीं लगवाती मेहंदी। बात सही थी, बेचारा निशांत अर्पिता की जिद का शिकार हुआ था, और जिद भी ऐसी कि जब तक उसने निशांत को मेहंदी लगते नहीं देख ली, खुद भी मेहंदी नहीं लगवाई थी, और उसकी जिद की सजा अब बेचारा निशांत भुगत रहा था। हर कोई उसे छेड़ रहा था, उसे चिढ़ा रहा था, जिससे परेशान होकर वो यहाँ आया था। अन्वय उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। बाबा अन्वय अब अपने जिंदगी के अनुभवों के आधार पर अपना ज्ञान झाड़ने लगे। मैंने तो पहले ही वॉर्न किया था तुम्हें, अंतरा को ही संभालना मुश्किल होता है मेरे लिए, और तुम्हारी अर्पिता तो उससे भी चार कदम आगे है। अभी तो शादी नहीं हुई और ये हाल है तुम्हारा, जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही तहस नहस करके रख देगी। अंतरा बवाल है और अर्पिता धमाल है। अंतरा का आतंक यहाँ कानपुर में देखने को मिलता है, यहाँ की आलू बम है वो, और अर्पिता दिल्ली की एटम बॉम्ब है। क्या आतंक मचाएगी तुम्हारी जिंदगी में, अभी से इसकी कल्पना कर लो तुम, और अब आदत डाल दो जिंदगी भर का साथ जो जुड़ने वाला है। जीजू, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, निशांत नाक मुंह से कोड़ते हुए नाराजगी से उसे घूरने लगा। बदले में अन्वय ने उसकी गर्दन पर अपनी बाह लपेट दी। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि अपने अनुभवों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब मूसल में सर दे ही दिया है तो कुटने से क्या डरना। चलो अब अपना मूड ठीक करो और चलकर खाना खाओ, हमारी भाभी यानी तुम्हारी जीजी कब से बुला रही है तुम्हें। आहाना का जिक्र आया तो निशांत बिना कुछ कहे ही उसके साथ चल पड़ा। कमरे में आया तो वहां तो कुंभ का मेला लगा था, दृशांत पल्लवी, आहाना, अक्षय, अंतरा सब वहां मौजूद थे। निशांत सबको वहां देखकर चौंक गया। अन्वय ने उसे महाराजा जैसे पलंग पर ठाट बाट के साथ बिठाया और उसके सामने खाने से सजी थाली रख दी गई। सबने बारी बारी उसे कौर बनाकर खिला दिया। खाते हुए वो आंखें बड़ी बड़ी करके सबको देखता रहा, और जैसे ही मुंह खाली हुआ वो आंखें चढ़ाए सबको देखने लगा। आज अचानक आप सबको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद अर्पिता यहाँ नहीं आने वाली, बल्कि आप सब मुझे डोली में बिठाकर विदा करने की तैयारी में हैं। अरे नहीं साले साहब, आपकी विदाई नहीं करेंगे हम, बस आपकी आज़ादी के इन चंद दिनों के बाद सब बदलने वाला है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि सिर्फ अप्पू ही नहीं, हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या मतलब? अन्वय की गोलमोल बात सुनकर निशांत हैरान परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। अन्वय उसके बगल में विराज गया और कॉलर चढ़ाते हुए उसके कंधे पर अपनी बाह लपेट दी। वो क्या है ना साले साहब, शादी के बाद लड़के भी पराये हो जाते हैं, फिर उन्हें अपनी बीवी में ही सारी दुनिया नजर आती है, तो हम सबको ऐसा मौका फिर दोबारा कहाँ मिलेगा कि आप हमारे साथ बैठे हो। अब हमारे भैया को ही देख लो, शादी के बाद हमारे साथ कम और भाभी के साथ ज्यादा नजर आते हैं, और हम बेचारे उनके वक्त और प्यार के लिए तरसते रह जाते हैं। दुखों के मारे अन्वय ने उदास चेहरा बनाया। उसकी बात सुनकर जहाँ आहाना सक पका गई, वहीं उसकी ओवर एक्टिंग पर अक्षय ने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे घूरा और उसका उड़ता हुआ हाथ सीधे उसके सर पर जाकर लगा, जिससे उसका सर फुटबॉल जैसे उछल गया। अपना सर सहलाते हुए उसने गर्दन घुमाकर नाराजगी से अक्षय को देखा तो उसने उसे गुस्से से घूरते हुए चेतावनी दी।
ज्यादा नौटंकी नहीं, अन्वय ने मुंह बना लिया। बात छिड़ी तो पल्लवी भी मैदाने जंग में कूद पड़ी। मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं अन्वय, लड़के कोई पराये वराये नहीं होते, बस उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अब एक लड़की अगर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आपके घर आ रही है तो उसका हक बनता है आप पर, और आपका फर्ज है उसका ख्याल रखना। वो आपके परिवार का अहम हिस्सा है तो उसे उसके हिस्से का प्यार, सम्मान और वक्त मिलना ही चाहिए। इसमें पराये होने वाली तो कोई बात नहीं। लो, पल्लवी ने भी उसे झाड़ दिया। बेचारा अन्वय मुंह लटकाए बैठ गया। इतने में अंतरा मैदानी जंग में कूद पड़ी और एक और निवाला लगभग से निशांत के मुंह में ठूंसते हुए शरारत से मुस्कुराने लगी। बात ऐसी है बेटा कि उस बकरी को तो तुम देखे ही होगे, जिसकी बलि चढ़ाने से पहले खूब पूजा की जाती है, खिलाया पिलाया जाता है, प्यार दुलार किया जाता है। अभी ना तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी ही है। हम तुम्हें सूली पर चढ़ाने की तैयारी में हैं, बस इसलिए तुम्हारी कुर्बानी से पहले तुम्हें अच्छे से खिला पिला रहे हैं, अंतरा ने जानकर उसे चिढ़ाया। बेचारा निशांत पहले तो घबराया हुआ सा उसे देखता रहा, फिर मुंह बिचकाकर रहाना को देखने लगा। जी जी, देखिए सब कैसे कर रहे हैं मेरे साथ। पहले तो बेचारा हमारा भाई घबराया हुआ है, आप सब मिलकर और मत डराइए उसे, आहाना ने सबको डांट दिया तो निशांत जीजी पुकारते हुए उससे लिपट गया। आप तीनों ने अभी तक मेहंदी क्यों नहीं लगाई? कुछ देर बाद निशांत ने आहाना, अंतरा और पल्लवी को देखते हुए सवाल किया, जिस पर तीनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। बस कुछ काम कर रहे थे, अब जा ही रहे लगवाने, जवाब पल्लवी ने दिया। तो जल्दी जाइए और जाकर मेहंदी लगवाइए, वरना वो चली जाएंगी। तीनों ने सर हिलाया और जाने ही लगी थी कि छोटी सी अप्पू अपने नन्हे नन्हे कदमों से ठुमकते हुए वहां चली आई। लहंगे में क्यूट सी डॉल लग रही थी और इतना नाची थी कि अब बिखरे बालों में उलझी और ज्यादा क्यूट लग रही थी। अद्दू आहाना के सामने आकर खड़ी हो गई और मुंह बिचका लिया। मम्मा, छुच्छू लगी है। पापा की प्रिंसेस, पापा के पास आओ, पापा आपको वॉशरूम ले जाते हैं, मम्मा को मेहंदी लगाने जाना है। अक्षय ने आगे बढ़कर अपनी बाहों में उसे उठा लिया। अद्दू ने अपनी नन्ही कलाइयों में सजी मेहंदी को देखा, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षय को देखने लगी। मम्मा भी मेले जैसी दीदाई बनाएंगी?
मम्मा भी आपके जैसे प्यारी सी मेहंदी लगवाएंगी, इसलिए अब आपको मम्मा को किसी बात के लिए बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, कोई भी काम हो तो पापा को बताना है, अक्षय ने बेहद प्यार से उसे समझाया। नन्ही अद्दू ने जोर से अपना सर हिलाया और उससे लिपट गई। अक्षय ने उसके चेहरे को चूमा, फिर निगाहें आहाना की ओर घुमाते हुए आंखों से ही जाने का इशारा किया। आहाना ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। पल्लवी ने निगाहें दृशांत की ओर घुमाई तो उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाईं, जैसे वो उसे आश्वस्त कर रहा हो कि वो बेफिक्र होकर जाए, उनकी गुड़िया को वो संभाल लेगा। और उसका साथ पाकर पल्लवी के लब भी मुस्कुरा उठे। दूसरी तरफ अर्पिता को मेहंदी लग रही थी, नाच गाना चालू था। मौके का फायदा उठाकर रिश्तेदारी से आई औरतों ने भी बहती नदी में हाथ धो लिया और मेहंदी लगाने आई लड़कियों से एक डिज़ाइन अपने हाथ पर छपवाने लगीं। कविता तो आई नहीं थी, पर राधिका ने शिखा और निशा को भी मेहंदी लगवा दी थी। उनकी दोनों बहनें तो मेहंदी लगवाने के बाद एक से एक गाने लगाकर जलवे बिखेर रही थी। राधिका कामों में उलझी थी, माधव भी वही था और बार बार उसे मेहंदी लगवाने को कह रहा था, पर वो अब तक बस काम दिखाकर टाल ही रही थी। अंत में माधव ने अर्पिता से गुहार लगाई। इशारों इशारों में उनकी कुछ बातें हुईं और अर्पिता ने राधिका को आवाज़ लगा दी, दीदी इधर तो आइए ज़रा। राधिका तुरंत ही हाथ में ट्रे पकड़े उसके पास पहुंच गई। हाँ, बोल अप्पू, कुछ चाहिए तुझे? हाँ, कुछ देर के लिए आपके दोनों हाथ उधार चाहिए, मिलेंगे क्या? अप्पू की बात सुनकर राधिका चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान से उसे देखने लगी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हो दीदी, मुझे मेहंदी लगवानी है आपको, इसलिए कुछ देर के लिए आपके हाथ उधार चाहिए। अब या तो आप यहाँ बैठ जाइए, नहीं तो दोनों हाथ काट कर दे जाइए, मेहंदी लगने के बाद वापस दे दूंगी आपको। बड़े ही आम से अंदाज में पर गंभीर भाव के साथ अप्पू ने ये बात कही। राधिका की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गईं, जबकि अर्पिता के पास बैठी शिखा मुंह पर हाथ रखे हंस पड़ी। राधिका को यूं आंखें फाड़े खुद को देखते पाकर अब की बार अप्पू खींचते हुए बोली, आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रही हैं आप मुझे, बैठिए यहाँ और मेहंदी लगवाइए। माधव रिक्वेस्ट कर रहा था और अप्पू मैडम ने सीधा ऑर्डर दे डाला था। राधिका के चेहरे पर विचलित से भाव उभर आए। अभी वक्त नहीं अप्पू, बाद में लगवा लूंगी मैं। ना जीना, आपको वक्त कभी मिलेगा नहीं और ये बात कभी आएगा ही नहीं, इसलिए कोई बहाना नहीं, चुपचाप यहाँ बैठकर मेहंदी लगवाइए। काम करने के लिए जीजू रुके हैं यहाँ, वो देख लेंगे सब। अप्पू की जिद के आगे राधिका को चिंता में डाल दिया। मौके पर छक्का लगाते हुए माधव ने आकर उसके हाथ से ट्रे ले ली और राधिका को अर्पिता के पास ही बिठा दिया। अप्पू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं हूँ यहाँ काम देखने के लिए, आप बेफिक्र होकर बैठिए और मेहंदी लगवाइए। राधिका को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला।
अर्पिता के पैरों की मेहंदी लग गई थी तो उसके कहने पर वो मेहंदी वाली राधिका को मेहंदी लगाने लगी और माधव मेहमानों की मेहमान नवाजी में लग गया। दोपहर तक सबको मेहंदी लग चुकी थी और सब अब खाने पर टूट पड़े थे। राधिका, अप्पू और उसकी दोनों बहनों की मेहंदी गीली थी, जबकि निशा और शिखा, जिन्होंने सबसे पहले मेहंदी लगवाई थी, उनकी मेहंदी सूख चुकी थी और अब वो दोनों हाथ धोकर माधव की मदद कर रही थी। लगभग सभी मेहमानों को खाना देने के बाद माधव ने शिखा से कहकर आशुतोष जी को बुलवा लिया और एक प्लेट में खाना निकालकर उन्हें दे दी। चारों बहनें अब साथ बैठी थीं और आशुतोष जी उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में खिलाया करते थे। वो नन्ही चिड़ियां जो कभी सारे घर में फुदकती थीं, आज अपने अपने घर की हो गई थीं और अब अर्पिता भी शादी करके यहाँ से जाने वाली थी। कितनी जल्दी वक्त बीत गया था। आशुतोष जी के साथ वो चारों भी पुरानी यादों के ताज़ा होने पर भावुक हो गए थे। माधव ने इस पूरे दृश्य को वीडियो के रूप में अपने फ़ोन में कैद कर लिया था। राधिका अपने रूम में चली आई। मेहंदी अभी भी गीली थी। बाकी तीनों ने अप्पू के रूम के बेड को हड़पा हुआ था और राधिका, जो बीते दिनों शादी की तैयारियों में व्यस्त रही थी, ज्यादा देर बैठने से अब उसकी कमर दुखने लगी थी तो कमर सीधी करने रूम में चली आई। राधिका पलंग पर आकर लेट गई और जैसे ही दर्द से करवट लेने लगी, किसी की उंगलियाँ हौले हौले उसकी कमर व पीठ पर फिसलने लगी। उस मखमली स्पर्श से कमर को कुछ राहत मिली और साथ ही लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। आप कब आए यहाँ? आँखें मूंदते हुए उसने सवाल किया, जिसे सुनकर पलंग के साइड में खड़ा माधव मुस्कुरा दिया। आपके आने से बस कुछ मिनट पहले। पर मैं आई तब मुझे तो आप नज़र नहीं आए। आपकी निगाहों के दायरे से बाहर था मैं, पर आप हर पल मेरी नज़रों के घेरे में रही। माधव ने हल्के हाथों से उसकी पीठ की मसाज करते हुए जवाब दिया। राधिका के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए और वो सर घुमाकर उसे देखने लगी। मतलब आप मुझसे छुपकर मुझे देख रहे थे, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। माधव रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। आपको कैसे पता चला कि मेरी कमर में दर्द है? कहा तो आप हर पल मेरी नज़रों की जद में रही। चलिए आप ठीक से लेटिए, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए मैं आपके कमर की मसाज कर दूँ। माधव के कहने पर राधिका मुस्कुराकर ठीक से लेट गई और अपनी हथेलियों पर सजी मेहंदी को देखने लगी और माधव उसकी बैक की मसाज करते हुए उससे बातें भी करता रहा। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आज का भाग आपको?